दिन भर तारीख 19 जून दिन मंगलवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। 3 साल बाद जम्मू कश्मीर सरकार के साथ ही पीडीपी बीजेपी की राह हुई अलग।
सबकी सहमति से आज हमने यह निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर सरकार में भाजपा अपनी भागीदारी को वापस लेगी।
ये हमारे दुश्मनों की टेरिटरी नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की टेरिटरी है, इसलिए यहाँ मस्कुलर पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती है।
कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बनाएंगे सरकार, कश्मीर की राजनीति पर क्या होगा असर?
ये सरकार है तो आती जाती रहती है, हम वहीं के वहीं है आज तक है। बीजेपी हो पीडीपी सब एक ही है, इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारतीय जनता पार्टी के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन सरकार से अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया है। महबूबा मुफ्ती रमजान के महीने में भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से किए गए संघर्ष विराम से नज़दीक से जुड़ी हुई थीं। माना जा रहा है कि बीजेपी और पीडीपी के बीच गठबंधन में दरार संघर्ष विराम की वजह से ही पड़ी है। रविवार को भारत की केंद्र सरकार ने चरमपंथी गतिविधियों में इजाफे को वजह बताते हुए संघर्ष विराम खत्म कर दिया था। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो लेमोरा ने कहा है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच अपने रिश्तों और यूरोपीय संघ के भविष्य को लेकर फैसले की घड़ी आ गई है। उन्होंने ये टिप्पणी जर्मनी और फ्रांस के नेताओं और मंत्रियों की इस महीने के अंत में होने वाले यूरोपीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक से कुछ घंटे पहले ही की है। लेमोरा ने कहा,
Nous sommes à l'heure de vérité de la relation franco-allemande.
हम फ्रांस और जर्मनी के रिश्तों और यूरोजोन के भविष्य को लेकर फैसले की घड़ी पर हैं। अगले कुछ घंटों में राष्ट्रपति और चांसलर या तो इन मुद्दों पर समझौता कर लेंगे और ये यूरोजोन को मजबूत करने में अहम होगा। इसका मतलब ये है कि हमारी आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा, या फिर हम समझौता नहीं कर पाएंगे। और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि हम यूरोजोन के लिए एक मुश्किल वक्त में दाखिल हो जाएंगे। इटली के धुर दक्षिणपंथी गृह मंत्री मैथियो साल्विनी के रोमा समुदाय के लोगों की गिनती करने और संभवतः उन्हें वापस भेजने के फैसले का अल्पसंख्यक अधिकार समूह कड़ा विरोध कर रहे हैं। एक मानवाधिकार समूह का कहना है कि नस्लीय आधार पर लोगों की गिनती करना ही पूरी तरह गैर कानूनी है। प्रवासी विरोधी लीग पार्टी के प्रमुख मैथियो साल्विनी ने सोमवार को टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतालवी नागरिकता वाले रोमा लोगों को वापस नहीं भेजा जा सकेगा। इतालवी चैनल टेले लोम्बार्डिया से बात करते हुए साल्विनी ने कहा, मैं इटली में रोमा लोगों पर सर्वे करवा रहा हूं ताकि पता चल सके कि कौन यहां है और कितने हैं। दुर्भाग्यवश इतालवी रोमा लोगों को हमें इटली में ही रखना होगा क्योंकि हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते हैं। रोमा समुदाय के बहुत से लोग इटली के बड़े शहरों के बाहर अवैध झुग्गियों में रहते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि साल्विनी की टिप्पणी ने नस्लीय नरसंहारों की याद दिला दी है। वहीं मानवाधिकार समूह ह्यूमन राइट्स वॉच ने साल्विनी पर नस्लवाद के आरोप लगाए हैं। यूरोप में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख बियरगिच वॉन ने साल्विनी की टिप्पणी को नस्लवादी बताते हुए कहा है कि उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की है वो रोमा समुदाय के लोगों को और अधिक लांछित करेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के $200 अरब कीमत के चीनी सामान पर नए टैक्स लगाने की चेतावनी देने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से कहा है कि वह व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाले अपने कथनों और कार्य को रोके। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन व्यापार युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन इससे डरा हुआ भी नहीं है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि चीन की अपनी अनुचित व्यापार गतिविधियों में बदलाव करने की कोई नीयत नहीं दिखती है। ट्रंप ने चीन के सामान पर पहले ही टैक्स लगाने की घोषणा की थी जो अगले महीने से प्रभावी हो जाएंगे। ट्रंप के बयान का असर एशियाई शेयर बाजारों पर भी दिखा है और शंघाई और हांगकांग शेयर बाजारों में 2% तक की गिरावट दर्ज की गई है। यमन में हुदैदा हवाई अड्डे पर कब्जे के लिए हुती विद्रोहियों और सरकारी सैन्य बलों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थक बलों ने यहां 1 सप्ताह पहले हुती विद्रोहियों पर हमले शुरू किए थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbcehindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। चार अप्रैल 2016 को जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन की ओर से महबूबा मुफ्ती ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ये एक ऐतिहासिक मौका था क्योंकि न सिर्फ महबूबा राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी बल्कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता में भागीदार बनी थी। उस समय न सिर्फ कांग्रेस बल्कि अन्य विरोधी दलों ने इसे बेमेल गठबंधन बताया था। बीच बीच में बीजेपी पीडीपी के बीच खटपट की खबरें आती रहीं लेकिन 3 साल 1 महीने तक सरकार चलती रही। आज अचानक बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया। चूंकि महबूबा सरकार अल्पमत में आ गई इसलिए महबूबा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी ने समर्थन वापसी का तर्क दिया कि आज जो हालात हैं जिसमें आतंकवाद और हिंसा बढ़ गई है। कार्यक्रम में आगे चर्चा होगी महबूबा मुफ्ती के जवाब की और जम्मू कश्मीर में आगे क्या होगा इसका विश्लेषण भी करेंगे, पर पहले सुनिए कि किस तरह से बीजेपी पीडीपी का गठबंधन टूट गया। बीजेपी बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
कल जब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू कश्मीर सरकार में शामिल अपनी पार्टी के मंत्रियों को दिल्ली बुलाया तो उसी समय से अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा था। अधिकतर लोगों को शक था कि बीजेपी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की सरकार से अलग होने का ऐलान कर सकती है। आज उनका शक सही साबित हुआ। दोपहर के खाने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव ने इसका ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया।
सबकी सहमति से आज हमने यह निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर सरकार में भाजपा अपनी भागीदारी को वापस लेगी।
बीजेपी ने गठबंधन से नाता क्यों तोड़ा? इसका जवाब देते हुए राम माधव ने कहा कि पीडीपी के साथ आगे चलना मुश्किल हो रहा था। उनका कहना था कि घाटी में प्रेस की आज़ादी खतरे में है। शुजात बुखारी जैसे सीनियर पत्रकार की श्रीनगर में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है।
आज जो परिस्थिति राज्य में निर्माण हुई है जिसमें एक भारी मात्रा में कश्मीर घाटी में आतंकवाद टेररिज्म एंड वायलेंस बढ़ गया, रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स दैट इंक्लूड राइट टू लाइफ एंड फ्री स्पीच ये भी खतरे में आ गए हैं वैली में, यह परिस्थिति की विषमता का एक परिचायक है। आज प्रेस फ्रीडम हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो ये भी खतरे में आ गया है।
राम माधव के अनुसार जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए रमजान में संघर्ष विराम का फैसला लिया जिसका अनुभव अच्छा नहीं रहा। बीजेपी की राज्य शाखा और सरकार में पार्टी का नेतृत्व करने वाले उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कहा कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं।
देश की एकता अखंडता सुरक्षा को देखते हुए जो निर्णय लिया गया जो अपने आप में पर्याप्त है, हमने राज्यपाल को अपना जो रेजिग्नेशन है भेज दिया है। हमारे मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री महबूबा जी को रेजिग्नेशन दे दिया है।
3 साल से अधिक चलने वाली इस गठबंधन सरकार के टूटने पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं तुरंत आईं। कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये फैसला इस बात को जताता है कि सरकार अपनी गलती मानती है।
मैंने प्रधानमंत्री जी को 2015 के शायद मार्च के पहले हफ्ते में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे कि जो जम्मू कश्मीर में आप सरकार बना रहे हैं ये हिमालया जैसी गलती होगी, हिमालयन गलती होगी, और हम प्रूव साबित हुए कि वो हिमालयन गलती थी।
शिवसेना ने कहा कि गठबंधन की कीमत जवानों को चुकानी पड़ी, ये गठबंधन ही व्यापार था। दरअसल 2014 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद दो अलग अलग विचारधारा वाली इन दोनों पार्टियों के बीच कई मुद्दों पर सहमति कभी नहीं बनी थी और कई सियासी विशेषज्ञों का मानना था कि दोनों में तकरार के कारण गठबंधन कभी भी खत्म हो सकता है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
कांग्रेस तो पहले दिन से ही कह रही थी कि एक हिमालयन ब्लंडर है। जैसा कि आपने सुना, बीजेपी ने गठबंधन की नाकामी का सारा ठीकरा पीडीपी पर फोड़ दिया। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में सख्ती की नीति नहीं चल सकती, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ संवाद और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते थे। उस समय अनुच्छेद 370 को लेकर घाटी के लोगों के मन में जो संदेह था लेकिन फिर भी हमने गठबंधन किया ताकि संवाद और मेलजोल जारी रहे। मुफ्ती ने इस घटना के तुरंत बाद अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। घाटी में काफी समय से सुरक्षा की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन अब राजनीतिक अस्थिरता से और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है। श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर की रिपोर्ट सुनिए।
हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी का एजेंडा है, हीलिंग टच पॉलिसी का जो पीडीपी का एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, यहाँ के लोगों से भी बात होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रास्ते खुलने चाहिए, उस पॉलिसी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं है। मस्कुलर पॉलिसी या सख्ती की पॉलिसी यहाँ नहीं चल सकती।
विरोधी दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने महबूबा मुफ्ती को राजनीतिक समर्थन देने से इनकार कर दिया है और जल्द ही चुनाव कराने की मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गवर्नर को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया।
हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द गवर्नर साहब और उनके साथी कोशिश करें कि रियासत में दोबारा साजगार हालात बने, नए सिरे से इलेक्शन हो, उन इलेक्शन के बाद लोगों का जो फैसला होगा वो हम सबको कबूल होगा। तो यही गवर्नर साहब से मेरी बातचीत हुई।
बीजेपी की महिला नेता हिना भट्ट ने बताया कि राज्य की स्थिति को देखते हुए सरकार से अलग होने का निर्णय लिया गया।
देखिए, शुजात बुखारी का जो असैसिनेशन था या बाकी जैसे हालात चल रहे हैं, ये कोई ताना नहीं लग रहा है कि ये बताने के लिए कि आउट ऑफ सिचुएशन है। द प्रेजेंट सिचुएशन इन जे एंड के, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी इन गवर्नमेंट बट टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड टू स्टॉप द किलिंग फर्दर किलिंग ऑफ द पीपल ऑफ जेएनके।
विश्लेषकों के अक्सर वर्ग कश्मीर की खराब स्थिति के लिए पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन को ही मूल रूप से जिम्मेदार बता रहे थे। बीजेपी के स्थानीय प्रवक्ता सुनील सेठी ने सरकार गिराने के लिए पीडीपी को ही दोषी ठहराया है। एक वक्तव्य में मिस्टर सेठी ने बताया कि पीडीपी ने हर बार बीजेपी के हाथ बांध लिए, परंतु अब चरमपंथियों के विरुद्ध खुलकर कार्रवाई होगी और पूरे देश को इस काम के लिए एकजुट किया जाएगा। सोशल मीडिया पर इस निर्णय को बीजेपी की चुनावी नीति बताया जा रहा है। ट्विटर पर पत्रकार और लेखक सबा नकवी ने लिखा है कि देश में सभी मंचों पर पिट जाने के बाद अब बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक तनाव और पाकिस्तान विरोधी पॉलिसी ही बची है। खुदा कश्मीरियों का हाफिज हो। बीजेपी के समर्थकों ने इस निर्णय को उचित बताया और कहा कि हिंसा को खत्म करने के लिए राजनीतिक एकजुटता जरूरी है, जो पीडीपी के साथ संभव नहीं थी। गौरतलब है, कश्मीर के 70 वर्षीय राजनीतिक इतिहास में महबूबा मुफ्ती पहली महिला मुख्यमंत्री थी, परंतु अपना कार्यकाल वो पूरा नहीं कर सकी। महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या पीडीपी ने 2014 में बीजेपी के साथ कश्मीर में गठबंधन सरकार बना ली, जिसके बाद इनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। राजपाट संभालने के एक वर्ष बाद ही जब मुफ्ती सईद की मृत्यु हो गई, तो निकटतम ढाई महीने तक दुविधा में रहने के बाद इनकी बेटी महबूबा मुफ्ती 2016 के मार्च में मुख्यमंत्री बन गई। परंतु तब से कश्मीर में प्रदर्शन और चरमपंथ गंभीर रूप से एक आंदोलन का रूप धार रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि नई दिल्ली के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि यहां चुनाव कराए जाएं, लेकिन इसके लिए अभी स्थिति सामान्य नहीं लग रही है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
जनता क्या सोचती है, कश्मीर में रहने वाले लोग इस गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं, और जब इनकी राहें अलग हो गई तो वो क्या सोचते हैं? माजी जहांगीर ने कुछ लोगों से बात की।
जी, मेरा नाम है सुहेल अहमद। जो पीडीपी वाले हैं उनके लिए शर्म की बात है कि उन्होंने किन के साथ गठबंधन किया होगा। तो महबूबा मुफ्ती, उसको ये समझ आया होगा कि मैंने किन के साथ हाथ मिलाया था। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा हुआ है, बीजेपी वालों ने जो स्टेप उठाया है बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। पिछले देखोगे कि वो कोई दिन ही नहीं होगा जिस दिन यहाँ पे सिविल किलिंग नहीं हुई है, यहाँ पे एनकाउंटर्स नहीं हुए हैं, यहाँ पे कैसो नहीं हुआ है, जो उन्होंने बड़ा नाम रखा है। खुशकिस्मत की बात है कि यहाँ पे अब गवर्नर रोल स्टार्ट हो रहा है।
मेरा नाम अहमद सरताज है। मेरा मानना है कि मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी को इससे कोई फ़र्क पड़ता है। आम आदमी को चाहे सरकार कोई भी आए, लेकिन आम आदमी तो वैसा ही है बेचारा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ यहाँ के हालात ठीक रहने से, क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी यहाँ के हालात से ही चलती है। बाकी मुझे नहीं लगता किसी आम आदमी को इस सरकार गिरने से कोई फ़र्क पड़ा हो। मुझे लगता है जब स्टार्टिंग में मतलब नई गवर्नमेंट आई थी, तो शायद मुझे लगता है बीजेपी को ये सबसे अच्छा मौका था कि यहाँ कश्मीरियों का दिल जीतने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो कामयाब हो गई इसमें। उन्होंने कश्मीरियों का दिल जीतने में वो नाकाम रही है।
मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। देखिए, हमारे साइड से इससे कोई फ़र्क नहीं है, सरकार कौन सी हो, बीजेपी हो या पीडीपी हो। जो हमारा मसला है, मेन मसला है, हम उस मसले को देखना चाहते हैं। ये सरकारें तो आती जाती रहती है, हम वहीं के वहीं हैं आज तक है। बीजेपी हो, पीडीपी, सब एक ही है। हम इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। जो बेसिकली हमारा जो मसला है, जो जम्मू कश्मीर का मसला, सियासी मसला है, वो हल होना चाहिए।
मेरा नाम शकील अहमद है सर। हम इसको इससे देखें, ये दोनों कश्मीरी के लिए जालिम थे। कश्मीरी लोग सब खुश हो गए, क्योंकि बीजेपी ये कभी अपने नहीं बनेंगे, ये तो शुरू से पहले मालूम था, ये किसी न किसी दिन निकलेंगे बाहर। अब इसको भी सबक सीखना चाहिए महबूबा को, कभी ये दोस्त नहीं बनेंगे।
आम जनता की आवाज़ आप सुन रहे थे। सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन को। अनुराधा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहा यह जा रहा है कि जो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक महीने का जो संघर्ष विराम आगे बढ़ाने की बात हो रही थी, जिसको कि नहीं बढ़ाया, सबसे बड़ी वजह क्या यही है?
ये अब ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो सूरत हाल थी, सीज फायर की वजह से एक हल्की सी रोशनी की किरण नजर आई थी, एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। कुछ एक हालात को एक मेजर तरीके से तो नहीं बदले थे, लेकिन एक हल्का सा ऐसा एक माहौल बन रहा था जिसमें कि बातचीत की और पीस प्रोसेस की स्पेस बनती नजर आ रही थी। कुछ जो वायलेंस है उसमें भी कम वो कमतर हुए थे, और जो स्टोन पेल्टिंग के जो प्रोटेस्ट हैं वो कम हुए थे।
लेकिन शुजात बुखारी की हत्या होना,
देखिए जिस तरह से मैं उसी पे आ रही हूँ, हर पिछले एक साल का आप एवरेज ले लें तो ऑन एन एवरेज एक रोज का एक नया मिलिटेंट बन रहा था। तो पिछले महीने की जो फिगर्स थी वो 13-14 से ज्यादा मिलिटेंट नहीं बने, तो ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज थी। एक चीज ये थी कि लोगों में था, और बहुत सारे लीडर्स ने, ये हुर्रियत वालों ने भी क्वेश्चन किया और कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने भी क्वेश्चन किया कि बीजेपी की तरफ से क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ बीजेपी के लीडर सीज फायर के खिलाफ बोल रहे थे, हालांकि यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से ये सीज फायर का ऑफर आया और एक डायलॉग का ऑफर आया जो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उसमें कोई कंडीशनैलिटीज पहले की तरह नहीं थी, एक उनके स्टैंड में फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही थी।
अनुराधा, क्या भारतीय जनता पार्टी को ये, जी जी अनुराधा, क्या भारतीय जी प्लीज,
मैं ये बोल रही हूँ कि पिछले एक हफ्ते में थोड़े से वायलेंस के इंसिडेंट में इजाफा हुआ था, लेकिन सीज फायर जब भी होगा ये एक्सपेक्ट करना बहुत गलत होगा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में, जो एक इतना पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, कि एकदम से हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात बेहतर होते टाइम लगता है, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसे हैं हर तरफ के जो नहीं चाहते कि अमन हो।
जी, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में अनुराधा, बहुत समय नहीं है हमारे पास। क्या बीजेपी को ये लगने लगा था कि 2019 की राह में ये गठबंधन रोड़ा बन चुका है और अब इससे मुक्ति पाने की जरूरत है?
जी, मुझे लगता है वो पहले से ही इसी कोशिश में थे। ये तो आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पार्टीज थी, जो शुरू में गठबंधन हुआ, एक एजेंडा ऑफ अलायंस बना, और दोनों फिर भी उसके बावजूद एक अलग अलग दिशा में चल रहे थे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही काम कर रहे थे।
तो मतलब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक मतलब मौके की तलाश कर रही थी और मौका मिला,
एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे थे और ये एक एक्सक्यूज उनको मिल गया।
बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा भसीन, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 अरब डॉलर के चीनी सामान पर नए टैक्स लगाने की चेतावनी देने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने अमरीका से कहा कि वो व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाले अपने बयानों और कामों पर लगाम लगाए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन व्यापार युद्ध नहीं चाहता, लेकिन इससे डरा हुआ भी नहीं है। अब से कुछ देर पहले मैंने बीजिंग में वरिष्ठ पत्रकार साइबल दास गुप्ता से बात की और पूछा, जहां एक ओर ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं, वहीं चीन कह रहा है कि वो ट्रेड वॉर तो नहीं चाहता लेकिन डरा भी नहीं है, क्या संकेत दे रहा है वो?
जी, पहले नंबर वन, आप वार्तालाप को अगर, डायलॉग को अगर ये समझते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच में हो रहा है, ऐसा नहीं है। तीन लेवल पे वार्तालाप हो रही है। सबसे पहले किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का अपने ही ऑडियंस से वार्तालाप करें, तो चीनी सरकार अपने लोगों की मॉरल टूटने से बचा रही है, खास करके साउथ चाइना में जहां एक्सपोर्ट पर पूरा बिजनेस और इंडस्ट्री निर्भर है। उनकी तो मॉरल बुरी तरह से टूट जाएगी अगर सही में ट्रंप भाई ये इस काम को कर बैठे जो वो कह रहे हैं। तो उस मॉरल को चढ़ाना, उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। दूसरा तो जैसे आप डायलॉग आप जानते हो अमेरिका के साथ, लेकिन तीसरी बात यह है कि WTO और यूरोपियन यूनियन के साथ चीन का एग्जैक्टली इन्हीं मसलों पर राइट नाउ नेगोशिएशंस चल रहा है। तो डर तो यूरोपियन मार्केट लूज करने का है, WTO में केस हारने का है। ये मोदी साहब के लिए जो इतना प्यार आ गया, जिसको लेके हमारी मीडिया एकदम पागल हो गई, उसके पीछे कारण यह है कि WTO की लड़ाई में, यूनाइटेड नेशंस की लड़ाई में, यूरोपियन यूनियन की लड़ाई में और ट्रंप के साथ लड़ाई में उनको भारत का साथ चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट माने रखता है कि हम हारने वाले नहीं है, डरने वाले।
तो आगे आने वाले दिनों में क्या देखते हैं कि क्या निगोशिएशन हो जाएंगे या ट्रंप जो चीनी सामान पर जो शुल्क लगा रहे हैं ये सारी चीजें वाकई होंगी या बीच का कोई रास्ता निकल आएगा?
ट्रंप का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत बुरी हालत है और ट्रंप को मिराकल करने की जरूरत है, इसीलिए उसने नॉर्थ कोरिया का हाथ उठाया, हाथ में लिया, मेक्सिको को गालियां दी और चीन के साथ लड़ाई कर रहा है। देखिए, एक चीनी कंपनी ZTE टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो रंगे हाथ पकड़ी गई टेक्नोलॉजी चोरी करने के लिए और $1 बिलियन उस पर फाइन हुआ जो उसने दिया और ये एक सप्ताह भी नहीं हुआ इस बात को। तो ट्रंप चाहे उसके बारे में लोग कुछ भी कहे लेकिन वो प्रूफ कर रहा है कि चीनी कंपनियां दबाव में आ रही है और उन पर जो पेनल्टी लग रही है वो देने को तैयार है। तो ऐसा नहीं कि चीन दब नहीं रहा है, लेकिन ये समझना कि ट्रंप हावी हो जाएगा और चीन बिल्कुल हाथ पैर जोड़ देगी ये गलत इसलिए है कि इसको हमको टोटल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, जो गैप है, जितना माल अमेरिका बेच नहीं पाता है चीन को और चीन ज्यादा बेच देती है अमेरिका को, वो $350 बिलियन का गैप है और ट्रंप की जो कोशिश है वो $50 बिलियन मतलब 7 हिस्से का एक हिस्सा टारगेट कर रहा है। तो मान लो कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से विजय प्राप्त करता है फिर भी चीन के टोटल अमेरिका के साथ जो वाणिज्य है, जो ट्रेड है, उसमें 15% नुकसान होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो चीन को मार तो पड़ेगी लेकिन चीन टूटेगा नहीं जो ट्रंप सोच रहा है, ऐसा संभव नहीं।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार साइबल दास गुप्ता जो कि विश्लेषण कर रहे थे अमरीका और चीन के बीच ट्रेड वॉर जैसी स्थिति का। आज के रूस या कहें कि विघटन के पहले के सोवियत संघ के साथ भारत के करीबी रिश्ते हुआ करते थे। इन रिश्तों में भारतीय फिल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कभी दोनों देशों में बॉलीवुड फिल्में साथ रिलीज हुआ करती थी। एक विशेष रिपोर्ट सुनिए नितिन श्रीवास्तव की मास्को से।
बॉलीवुड गानों की धुन, वो भी रूस के त्वेर शहर के सिटी हॉल में जहाँ हम मौजूद हैं। भारतीय गानों और क्लासिकल डांस का रियाज यहाँ रोज होता है। आज रियाज को लीड कर रही हैं लीना गोयल, जिन्होंने हेमा मालिनी से प्रेरणा लेकर और भारत में डांस सीखने के बाद इस सिलसिले को 2 दशक पहले शुरू किया था।
इश्क बिना हम कुछ नहीं।
लीना अब एक बड़ा डांस ग्रुप चलाती हैं जिसका थीम बॉलीवुड ही रहता है। लीना ने बताया,
मुझे पुराने बॉलीवुड की फिल्में बहुत अच्छे लगते हैं, रेट्रो। उस टाइम हमारे सोवियत संघ में फिल्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, जैसे शोले, कभी कभी, दो अनजाने हैं, राजा जाने, ये बहुत इमोशनल फिल्म है। इंडियन सिनेमा यही दिखाते हैं जो हर इंडियन को, हर रशियन को, वो जो टॉपिक है वो करीब है, ये फैमिली के बारे में है।
मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
भारत और रूस के रिश्तों की बात हो और बॉलीवुड का जिक्र ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं। चाहे राज कपूर हो, नरगिस और मिथुन चक्रवर्ती ही क्यों ना हो, भारतीय सिनेमा के सितारे हमेशा से ही रूस में लोकप्रिय रहे हैं।
कहो भाई, आए कहाँ से हो?
रूस? इस देश का तो हमने कभी नाम नहीं सुना, यहाँ से बहुत दूर है क्या?
बहुत ही दूर, 2 बरस में पहुँचा हूँ।
सोवियत यूनियन से भारत के करीबी रिश्तों में हिंदी फिल्मों का बड़ा रोल रहा है। एक दौर था जब कई फिल्में साथ बनती थीं और दोनों देशों में साथ रिलीज भी होती थीं। श्री 420, आवारा और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में मौजूदा रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया में महीनों सिनेमाघरों में लगी भी रहती थी।
निकल पड़े हैं खुली सड़क पर।
लेकिन क्या आज भी बॉलीवुड रूस में उतना ही देखा और सुना जाता है?
भारत में मैं जब फिल्में देखते हुए बड़ा हो रहा था तो अक्सर सुनने को मिलता था कि रूस में इंडियन सिनेमा की धूम मची रहती है। यहाँ पर आकर पता लगा कि बात में काफी हद तक सच्चाई है। अभी भी क्रेज पुराने स्टार्स का ज्यादा है, लेकिन जो हकीकत है वो ये भी है कि जो यंग जनरेशन है यहाँ की, उसकी दिलचस्पी बॉलीवुड से ज्यादा हॉलीवुड में है।
मॉस्को में रहने वाली शबनम को बॉलीवुड से बे इंतहा मोहब्बत रही है, इसलिए वे सालों से एक भारतीय रेस्टोरेंट में ही काम करती रही हैं। लेकिन इन्हें अफसोस है कि रूस में अब भारतीय फिल्में ना तो सिनेमा घरों में लगती हैं और ना ही बाजार में मिलती हैं।
एक्चुअली मैं भी बहुत कम लोग को अभी न्यू वाला मूवी वाला हीरोइन हीरो को बहुत कम जानता है। एक्चुअली लोग को अपना पुराना है सब छोड़ दिया, मतलब इंडियन पिक्चर वो अमेरिकन सेम होता है। मतलब पहले तो बहुत दुनिया तक लोग जानता है, पूरा देखता है इंडियन फिल्म, बड़ा बड़ा वो थिएटर में दिखा दिया उसको पसंद। मुझे तो बाजीराव मस्ताना हो गया, आधा देखा कब न्यू आया, उसके बाद में लास्ट तक इतनी परेशान हो गया कहाँ देखना है, ऑनलाइन में भी नहीं आते, इतनी इंटरनेट में देखा, फिर दोस्त लोग भैया लोग इंडिया से सीधी ले गया, लास्ट तक देखा उसको, कम से कम उसको 8 महीने वेट किया ढूंढता है क्या उनसे मिलना था।
मैं खुद जितने शहरों में जा सका कहीं भी ना तो किसी सिनेमा घर में कोई बॉलीवुड फिल्म दिखी और ना ही कहीं बॉलीवुड सितारों के पोस्टर दिखे। यहाँ तक कि भारतीय नाम वाले जो रेस्टोरेंट होटल वगैरह भी हैं वहाँ भी अब फिल्मों के पोस्टर या सितारों की तस्वीरें नहीं मिलती। रूस में बॉलीवुड फिल्मों का क्रेज थोड़ा घटा है लेकिन भारतीय डांस आज भी लोगों को घर के बाहर खींच लाते हैं। एना एक डांस स्कूल में जाती हैं और भारत आकर परफॉर्म करने की तमन्ना रखती हैं।
मैंने अपने बच्चे के जन्म के समय थोड़ा ब्रेक लिया था लेकिन अब फिर से बॉलीवुड डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मुझे इन पर स्टेज शोज करना पसंद है।
रूस में म्यूजिक और डांस की एक खास जगह रही है। कई लोगों को आज भी उम्मीद है कि भारतीय फिल्में और गाने भी दोबारा कमबैक करेंगे। नितिन श्रीवास्तव, BBC मॉस्को।
तो जैसा कि आपने सुना कि रूस में भारतीय फिल्मों का वो क्रेज नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। और अब कार्यक्रम में खेल की खबरें। इस स्टूडियो में मौजूद है राखी शर्मा। तो अभी हम रिपोर्ट सुन रहे थे, रूस से स्पेशल रिपोर्ट सुन रहे थे नितिन श्रीवास्तव की। वहीं पर वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल, कहाँ से शुरू कर रहे हैं?
आज के पहले मैच के नतीजे से शुरू करते हैं जिसमें कोलंबिया और जापान आमने सामने थी। जापान ने ये मुकाबला 2-1 से जीत लिया है। जापान की तरफ से शिंजी कगावा और युआ ओसाका ने गोल किया। कोलंबिया के लिए इकलौता गोल जुआन फर्नेंडो क्वांटेरा ने दागा। हाफ टाइम तक दोनों टीमें बराबरी पर थीं लेकिन 73वें मिनट में जापान ने बढ़त बना ली। दूसरे मुकाबले में अब से कुछ देर बाद पोलैंड और सेनेगल के बीच मुकाबला होगा। दूसरी बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली सेनेगल ग्रुप एच में पोलैंड जैसी दिग्गज टीम को हराकर अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी। सेनेगल 16 साल बाद और पोलैंड 12 साल बाद विश्व कप खेल रहे हैं। सेनेगल इससे पहले 2002 में विश्व कप में उन्होंने हिस्सा लिया था और विश्व जगत को हैरान करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं पोलैंड ऐसी टीम है जिसने 6 बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है और 4 बार ग्रुप स्टेज को पार करने में सफल रही है। इस टीम के पास एक स्टार खिलाड़ी है जो सेनेगल की राह में बाधा डाल सकता है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड की नींव है जिस पर पूरी टीम निर्भर करती है। तीसरे मैच में सऊदी अरब को 5-0 से शिकस्त देने वाली मेजबान टीम रूस का सामना मिस्र से होगा। मिस्र की टीम रूस की तुलना में कहीं मजबूत है। ग्रुप ए का ये मुकाबला सेंट पीटर्सबर्ग में खेला जाएगा। पहले मैच में रूस ने सऊदी अरब को 5-0 के अंतर से हराया था तो मिस्र को इससे पहले उरुग्वे के सामने 0-1 से हार का सामना करना पड़ा था। पहले मैच में अंतिम पलों में मिली हार के बावजूद मिस्र का आत्मविश्वास काफी ऊंचा है क्योंकि उसके स्टार स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह चोट से उबर कर इस मैच में वापसी कर रहे हैं। पिछले मैच में उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा था। वो इस टीम के आक्रामक पंक्ति को न केवल मजबूती देंगे बल्कि टीम में एक नई जान फूंकने का वो काम करेंगे। इस मैच में जीत मिस्र के अगले दौर में जाने के लिए बेहद जरूरी है और हार से उसके अभियान को यहाँ झटका लग सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया राखी शर्मा। और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त आ चला है।
भारतीय जनता पार्टी के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन सरकार से अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो लेमोरा ने कहा है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच अपने रिश्तों और यूरोपीय संघ के भविष्य को लेकर फैसले की घड़ी आ गई है। इटली के धुर दक्षिणपंथी गृहमंत्री मैथियो साल्विनी के रोमा समुदाय के लोगों की गिनती करने और संभवतः उन्हें वापस भेजने के फैसले का अल्पसंख्यक अधिकार समूह कड़ा विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के $200 अरब कीमत के चीनी सामान पर नए टैक्स लगाने की चेतावनी देने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने अमरीका से कहा है कि वह व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाले अपने कथनों और कार्यों को रोके। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। फेसबुक पर इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में सहयोग दिया मीना ने। bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है 24 घंटे लगातार। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।